हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। तारा ने अमन से कहा था, नहीं नहीं अमन सर, मैं ऑफिस जरूर जाऊंगी, मेरा यहाँ घर बैठे मन नहीं लगेगा, और वैसे भी आपने तो मुझे पूरे ऑफिस का हेड बना दिया है, तो मुझे तो कुछ काम ही नहीं करना होगा, मुझे सिर्फ सब लोगों से काम ही तो करवाना है, तो इसमें क्या बड़ी बात है, मैं आराम से लेट कर बैठ कर भी तो काम करवा सकती हूँ, मैं तो बॉस हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तारा ने थोड़ा सा मजाकिया लहजे में कहा था। तारा की बात सुनकर करिश्मा की बोली थी, लेकिन बेटा इस वक्त तुम्हें आराम की बहुत ज्यादा जरूरत है, हम नहीं चाहते तुम्हारे मन पर किसी भी तरह का कोई बोझ हो या दबाव हो। करिश्मा जी की बात सुनकर तारा बोली थी, लेकिन मॉम अगर मैं यहाँ पर अकेले घर में रहूंगी तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, तो वो मेरा दिमाग पर ज्यादा दबाव डालेगा, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं वादा करती हूँ मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी, तारा भी एक रिक्वेस्ट करते हुए कहा था। इस बीच विक्रांत रंधावा कुछ भी नहीं बोल रहा था, उसकी नज़र तो सिर्फ और सिर्फ तारा पर थी, वो तारा को बड़ी ही अजीब नज़रों से देखे जा रहा था। इन सब बातों के बीच तारा का उसकी ओर एक बार भी ध्यान नहीं गया था, लेकिन अपने ऊपर किसी की तपिश उसे ज़रूर महसूस होने लगी थी, लेकिन उस वक्त उसने इग्नोर कर दिया था और अमन से ऑफिस जाने की ज़िद करने लगी थी। तभी विक्रांत बोल पड़ा था, अरे ठीक है भाई, अगर तारा जी को घर पर नहीं रहना है तो ले लो ना ऑफिस में, और वैसे भी हम लोग तो हैं ना वहाँ पर उनका ध्यान रखने के लिए। तब जैसे विक्रांत रंधावा ने बात खत्म की थी, विक्रांत खुद चाहता था कि तारा ऑफिस आए, क्योंकि आज विक्रांत भी अमन को उसके साथ ऑफिस में ज्वाइन करने वाला था, क्योंकि वो दोनों एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक साथ मिलकर काम करने वाले थे, तो विक्रांत भी आज के बाद अमन के ही ऑफिस जाएगा। जैसे ही तारा को ये बात पता चली, वो थोड़ा सा कुछ सोचने लगी थी और बोली थी, तो विक्रांत जी आप भी अमन सर को ही ज्वाइन करेंगे, पर लेकिन क्यों, मैंने तो सुना है कि आपकी ऑलरेडी यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसी के रिगार्डिंग आप यहाँ भारत आए हैं। तब तारा की बात सुनकर विक्रांत ने कहा था, हाँ तारा जी मेरी कंपनी तो है, लेकिन मैं कुछ समय अपने बचपन के दोस्त के साथ बिताना चाहता हूँ, और अगर मैं कंपनी में गया तो मैं वहाँ इतना बिजी हो जाऊँगा कि मुझे इससे बात करने का भी मौका नहीं मिलेगा, और शाम को तो ऑफिस से हम लोग थक कर आते हैं और सो जाते हैं, अगर एक साथ रहेंगे और एक साथ काम करेंगे तो हमें काफी वक्त साथ बिताने का मौका मिल जाएगा, और वैसे भी मैं यहाँ पर कुल 15 दिनों के लिए ही तो हूँ, उसके बाद तो मैं फिर वापस मुझे जाना ही है। विक्रांत ने जैसे अपना पक्ष क्लियर किया था, जैसे ही तारा ने ये सुना कि विक्रांत केवल 15 दिन के लिए वहाँ था, तो उसकी भी काफी हद तक टेंशन खत्म हो गई थी, वरना विक्रांत को लेकर उसके मन में कुछ शंकाएं पैदा होने लगे थे, लेकिन विक्रांत ने ये कहकर कि वो 15 दिन के लिए ही वहाँ पर है, सारी शंकाओं को विराम दे दिया था। सो बात क्लियर हो गई थी। अब तारा, अमन और विक्रांत एक साथ ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। तारा अमन के साथ उसकी गाड़ी में पीछे बैठी हुई थी, और जबकि विक्रांत और अमन एक साथ आगे बैठे हुए थे। विक्रांत भले ही आगे बैठा हुआ था, लेकिन साइड मिरर से वो केवल तारा को ही देखे जा रहा था, जबकि तारा ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था, वो आराम से बैठकर ऑफिस की ओर रवाना हो चुकी थी। वहीं मल्लिका और अमित बुरी तरह से भिन्नाए हुए थे, क्योंकि उनका प्लान पूरा होते होते जो रह गया था, काली शक्तियों का मालिक अमित का गुस्से के मारे बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था, और जब से उसे ये पता चला कि जिस वेटर ने उसकी मदद की थी वो गायब हो चुका है, तो तब से उसे और गुस्सा आ गया था, साथ ही साथ डर सा भी लगने लगा था कि आखिर ऐसी कौन सी काली शक्ति या अच्छी शक्ति है जो तारा की मदद कर रही है, जिसने तारा के साथ गलत करने वाले को इतनी बुरी तरह से गायब कर दिया, तो वो अमित का क्या हाल करेगा। अमित को अब एक अनजाने से खतरे का एहसास होने लगा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी लड़ाई आखिर है किससे, किससे लड़ेगा वो, क्योंकि उसके सामने तो कोई था ही नहीं, जिसने उस वेटर को गायब किया था उसका तो नामो निशान तक उसे नहीं पता था। अब अमित का दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था, और उसने अपना सारा गुस्सा मल्लिका पर उतार दिया था। जैसे ही मल्लिका ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, अमित ने एक जोरदार चांटा उसके मुंह पर दे मारा था और बोला था, ये आधे नंगे कपड़े पहनकर तू चली तो गई वहाँ पर, लेकिन क्या हुआ, कुछ फायदा हुआ इस बात का, तेरे इस नंगे बदन का भी उसे अमन के दिल पर कोई असर नहीं हुआ था, उल्टा वो जितने भी वो इंसानी कीड़े थे, यानी के लोग थे, वो तुझ पर अपनी लार टपका रहे थे, और उस दो कौड़ी की इंसान तारा ने तुझे सबके सामने नीचे गिरा दिया था, लेकिन उस अमन पर तेरी इस खूबसूरती पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसा कहकर अमित ने एक और चांटा उसके मुंह पर दे मारा था। मल्लिका खुद को संभाल नहीं पाई थी और उसका सिर उस सामने वाली दीवार पर जा लगा था। मल्लिका अपनी आंखों में आंसू लाकर बोली थी, लेकिन हे काली शक्तियों के मालिक, इसमें मेरी क्या गलती थी? मल्लिका, सारी गलती तो उस तारा की थी ना, उस तारा पर हमारे जहर का असर ही नहीं हुआ था। आखिर क्यों, जबकि आप अच्छी तरह से जानते थे आपके द्वारा बनाया गया काली शक्तियों का तरल पदार्थ उसे कितना नशे में करने वाला था। लेकिन उसे पर तो कोई नशा ही नहीं हुआ था, उसे उल्टा उससे हरी हरी उल्टियाँ होने लगे थी। जैसे ही अमित ने ये सुना कि तारा को हरी उल्टियाँ हो रही थी, तो वो हैरान रह गया था और बोला था, ये क्या कह रही हो तुम, क्या तारा को हरी उल्टियाँ हो रही थी? तब मल्लिका ने अमित से कहा था, जी हाँ, क्या आपने नहीं देखा था? तब अमित ने कहा, नहीं, मैं नहीं देखा था, मैंने बस केवल उसे वक्त उसके पास गया था जब वो पानी गायब हो गया था। मैं आपको यही तो बता रही थी कि उसको कुछ भी असर नहीं हुआ था, उसे केवल हरी उल्टियाँ हो रही थी। जैसे ही अमित ने ये सुना, वो हैरानी से एक तरफ बैठता हुआ चला गया था और हल्का हल्का कांपने लगा था। अमित की इस तरह की हालत देखकर मल्लिका पूरी तरह से सोच में पड़ गई थी कि अचानक से इस काली शक्तियों के मालिक अमित को क्या हुआ था, वो इस तरह का बिहेव क्यों करने लगा था और इस तरह से क्यों कांप रहा था। तब मल्लिका खुद को रोक नहीं पाई और वो अपने अपने सर, जहाँ उसे चोट लगी थी, उसे सहलाती हुई अमित के सामने जा खड़ी हुई थी और बोली थी कि मलिक मलिक, क्या हुआ आपको, आप इस तरह से क्यों कांप रहे हैं? कितनी ही देर तक पूछने के बाद अमित बोला था, वो आ गया है क्या? या। जैसे ही मल्लिका ने सुना, वो भी हैरान रह गई थी और बोली थी, कौन आ गया है और क्या हो गया है आप? आप इस तरह की बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? तब अमित ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा था, काली शक्तियों का अंत करने वाला आ गया है। या। जैसे ही मल्लिका ने ये सुना, उसका दिमाग, दिल और दिमाग सुन हो चुका था, उसका पूरा जिस्म सुन पड़ चुका था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके दिमाग कानों में से केवल यही बातें गूंज रही थी कि तारा माँ बनने वाली है, माँ बनने वाली है, माँ बनने वाली है। जैसे ही मल्लिका ने ये सुना, उसका बहुत बुरा हाल हो गया था। उसे और उसने अपने दोनों हाथों को अपने दोनों कानों पर रखते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहा था, नहीं, ये नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है।
वो माँ नहीं बन सकती है। भला वो कैसे माँ बन सकती है? ऐसे नहीं हो सकता है। मैं नहीं हार सकती हूँ, मैं नहीं हार सकती हूँ, वो भी एक मामूली इंसान से, ऐसा नहीं हो सकता है। मल्लिका की हालत अब बहुत बुरी होने लगी थी। मल्लिका बहुत बुरी तरह से पैनिक करने लगी थी। तभी काली शक्तियों के मालिक अमित ने उसे शांत करने की कोशिश की थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि मल्लिका खुद अमन के साथ रिश्ता बनाकर उसके साथ पहली औलाद पैदा करना चाहती थी। क्योंकि अमन की पहली औलाद अब तारा के पेट में थी, तो अब ये पॉसिबल ही नहीं था। तब काली शक्तियों का मालिक अमित उसे शांत करने की कोशिश करने लगा था और बोला था, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब हमें और मेहनत और दिमाग से काम लेना होगा। हमें उसके बच्चे को उसके पेट में ही मारना होगा, क्योंकि उस बच्चों ने आते ही अपनी माँ को उस काली नशे की गोलियों से बचा लिया था। क्योंकि तारा का हरी उल्टी करने का मतलब यही था कि उसकी किसी ने रक्षा कर दी थी, और उसकी रक्षा किसी और ने नहीं, उसके पेट में पल रहे बच्चे ने की थी, क्योंकि अमन को तो मैंने वहाँ से कहीं दूर भेज दिया था। मल्लिका अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगी थी और अमित की बात सुनकर उसे थोड़ी थोड़ी हिम्मत मिलने लगी थी। अमित ने उस बच्चे को मारने की बात कही थी जो अभी पैदा भी नहीं हुआ था। अगर वो बच्चा मर जाता है तो, और फिर अगर मल्लिका अमन के साथ जिस्मानी रिश्ता बनती है और उसकी जो औलाद पैदा होगी वही उसकी पहली औलाद कही जाएगी। ये सोचकर मल्लिका खुद को समझाने लगती है और जल्दी ही वो दोनों अपने अपने सिरे से तारा के बच्चे को खत्म करने का प्लान बनाने लगते हैं, और अगली सुबह वो दोनों भी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अमन, विक्रांत रंधावा और तारा के साथ ऑफिस पहुंच जाता है। वो दोनों तारा को कुछ ऑफिस से थोड़ा सा पहले गाड़ी से उतार देते हैं, जबकि विक्रांत का दिल नहीं चाह रहा था कि वो तारा को छोड़कर अमन के साथ आगे बढ़े, लेकिन वो उस वक्त मजबूर था, कुछ नहीं कर सकता था। वो तारा को ऑफिस से थोड़ा सा पहले उतार कर आगे बढ़ते हैं। तारा धीरे धीरे ऑफिस की ओर पैदल जाने लगती है और अभी वो थोड़ा सा आगे ही गई थी कि तभी अचानक। प्लीज दोस्तों, मेरी नई कहानी एक बार जरूर पढ़ें। डॉट डॉट डॉट। प्यार कहते हैं, प्यार एक ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान को बहुत ही ताकतवर भी बना देता है और बहुत ही ज्यादा कमजोर भी बना देता है। चाहे वो इंसान कितना ही क्रूअल हार्टेड क्यों ना हो, लेकिन प्यार उसके अंदर भी जज्बात भर देता है, उसके अंदर भी किसी को पाने की, उसे अपना बनाने की चाह भर देता है। ठीक उसी तरह से हमारी कहानी है एक ऐसे इंसान की जो इतना बेरहम है, जो किसी भी इंसान को नॉर्मल मौत तो देता ही नहीं है, वो उसकी इतनी दर्दनाक मौत देता है कि मौत भी कांप जाए। उस बेरहम इंसान का नाम है राणा, जिसकी दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ है पुलिस वालों के साथ। उसकी जिंदगी का केवल इकलौता मकसद है पुलिस वालों की जान लेना, किसी भी पुलिस वाले को जिंदा नहीं छोड़ना। बचपन से ही उसके दिलो दिमाग में पुलिस के खिलाफ एक सख्त नफरत भर गई थी, एक एक्सीडेंट की वजह से। वो क्या वजह थी कि जिससे सीधा साधा भोला भाला रणवीर बन चुका था राणा, जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह। इस स्टोरी के लिए पढ़िए ऑब्सेस्ड लवर, आपको मेरी प्रोफाइल में मिल जाएगी।